أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
اللهم لك الحمد كما هديتنا للإسلام وعلمتنا الحكمة والقرآن. اے اللہ، تمام تعریف تیرے ہی لیے ہے کہ تو نے ہمیں اسلام کے لیے ہدایت دی اور ہمیں قرآن اور حکمت کی تعلیم دی. لا الہ الا اللہ المتوحد فی الجلال بکمال الجمال تعظیما وتکبیرا، المتفرد بتصریف الامور علی التفصیل والاجمال تقدیرا وتدبیرا، المتعالی بعظمته ومجده، الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. نہیں کوئی الہ مگر اللہ جو اپنے جلال اور کمال حسن میں یکتا ہے، عظمت کے اعتبار سے بھی اور بڑائی کے اعتبار سے بھی، جو تمام کاموں کو تفصیلی اور اجمالی طور پر چلانے اور ان کی تدبیر اور تقدیر کرنے میں بالکل اکیلا ہے، جو اپنی عظمت اور بزرگی میں بہت بلند ہے. وہ ذات جس نے فرقان اپنے بندے پر نازل کیا تاکہ اس کے ذریعے وہ تمام جہانوں کو خبردار کرنے والا ہو جائے. وصلوات اللہ وسلامہ علی خاتم النبیین وإمام المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين وزوجاته الطاهرات أمهات المؤمنين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اور اللہ کی رحمتیں اور سلامتی ہو پیغمبر آخر الزماں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور تمام رسولوں کے امام پر اور آپ کی پاکیزہ اور طیب آل پر اور آپ کی صحابہ پر جو عظیم اور مبارک ہستیاں ہیں اور آپ کی ازواج پر جو پاکیزہ ہیں اور مومنین کی مائیں ہیں اور تابعین پر اور جنہوں نے بھی ان کی احسان کے ساتھ پیروی کی قیامت کے دن تک. وبعد ذلك رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی. اے میرے رب، میرا سینہ کھول دیجئے اور اس کام کو میرے لیے آسان کر دیجئے اور میری زبان کی تمام گھروں کو کھول دیجئے تاکہ وہ میری بات اچھے سے سمجھ سکیں. رب زدنی علما، اے میرے رب، میرے علم میں اضافہ کیجئے. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، اے اللہ، اس کام کو آسان کیجئے گا اور مشکل نہ کیجئے گا اور عافیت کے ساتھ تکمیل تک پہنچائیے گا. وما توفیقی الا باللہ، علیہ توکلت وإلیہ انیب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Empowerment your soul through juz 30. تدبر آخری جز کے اس خوبصورت شارٹ کورس میں میں آپ سب کو اہلا وسہلا مرحبا کہتی ہوں. حضرت صفوان بن عسال بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. آپ اس وقت سرخ چادر سے ٹیک لگائے مسجد میں تشریف فرما تھے. میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں تلاش علم میں حاضر ہوا ہوں. تو آپ نے فرمایا، مرحبا اے طالب علم. فرشتے طالب علم کو ہر طرف سے گھیر لیتے ہیں، اپنے پروں کے سائے میں اسے لے لیتے ہیں، ایک پر ایک جمع ہوتے ہیں، یہاں تک کہ علم کی محبت میں سب سے نچلے آسمان تک چلے آتے ہیں. اور یہ حدیث ہمیں احمد ترغیب کے باب میں ملتی ہے. میرے بہت پیارے اہل القرآن، اہل ایمان ساتھیوں، علم کی طلب ایک عبادت ہے اور علم کا مذاکرہ تسبیح ہے، علم کی تلاش جہاد ہے، بے علموں کو علم سکھانا صدقہ ہے، علم حلال اور حرام کا نقشہ ہے، جنت تک پہنچنے کا راستہ ہے، اور علم عمل کا رہنما ہے. نصیب والوں کو علم کی توفیق میسر آتی ہے اور بدبخت اس سے محروم رہتے ہیں. یہ علم ہی تو ہے کہ جس کی بنا پر ایک نورانی مخلوق نے ایک خاکی مخلوق کو سجدہ کیا. آپ اگر فرشتوں کو دیکھیں تو فرشتوں کے پاس کیسی کیسی طاقت ہے ہم اندازہ ہی نہیں لگا سکتے. حضرت جبریل علیہ السلام، جن کے 600 ونگز ہیں، اللہ اکبر. اسی طرح ایک اور فرشتہ کہ جنہوں نے اپنے پر ایک دفعہ زمین پہ مارا تو ایک پوری بستی الٹ کے رہ گئی، تباہ و برباد ہو گئی. اسی طرح ایک اور فرشتہ جو ایک آواز باہر نکالیں گے اور ایک سانس باہر نکالیں گے تو ساری دنیا ختم ہو جائے گی. اسی طرح ایک اور فرشتہ جس کا نام ہے صدلقہ، اور اگر اس کی جو تھم ہے اس تھم کے نیل پر ساری دنیا کے سمندر کا پانی انڈیل دیا جائے تو ایک قطرہ نیچے نہیں گرے گا. یہ تو ان کی پاور ہے. لیکن اگر عبادت کے لحاظ سے ہم دیکھیں تو حدیث میں آتا ہے، کچھ مفہوم یوں ہے کہ آسمان چرچرا رہا ہے. جب کسی چیز پہ بہت زیادہ ویٹ ہو جائے तो वो चिरचिराने लगता है क्योंकि फरिश्तों की इतनी तादाद है और वो अपने रब की इबादत में मशगूल हैं। जो सजदे में है उसको सजदे में इतनी लज्जत आ गई कि वो कयामत तक सजदे से सर नहीं उठाएगा। जो रुकू में है उसको रुकू में इतनी लज्जत आ गई कि वो कयामत तक रुकू से सर नहीं उठाएगा। जो कयाम में है उसको कयाम में इतनी लज्जत आ गई कि वो कयामत तक कयाम करने से बाज नहीं आएगा। और फरिश्ते हर वक्त अल्लाह की तस्बीह में मसरूफ रहते हैं। लेकिन इन तमाम चीजों के बावजूद अल्लाह ताला फरिश्तों को हुक्म दे रहे हैं, वह इस कुलना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम फसजदू, सबने सजदा किया। वाय इल्म के बिना पर। तो ये इल्म ही है जो इंसान को अशरफ और अकरम बना देता है। तो गोया इंसान तब तक अशरफ है जब तक इल्म सीखने या सिखाने से वाबस्ता रहता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत सूरह आराफ में फरमाते हैं, वलकद ज़रअना लिजहन्नम कसीरन मिन अलजिन्न वल इंस लहुम कुलूबुन ला यफ़क़हून बिहा वलहुम अयुनुन ला युबसिरून बिहा वलहुम आज़ानुन ला यस्मऊन बिहा उलाइका कल अनआम बल हुम अदल उलाइका हुमुल गाफिलून। कि हमने जहन्नुम को बहुत से इंसानों और जिन्नों से भर दिया है, उनके दिल तो हैं लेकिन वो उससे समझते नहीं हैं, उनकी आंखें तो हैं लेकिन वो उनसे देखते नहीं हैं, उनके कान तो हैं लेकिन वो उनसे सुनते नहीं हैं। ऐसे लोग जानवरों की तरह हैं या उससे भी बदतर हैं, और ऐसे लोग गाफिल हैं। यानी कि जहन्नुम में जो अक्सरियत होगी जिन्नों की और इंसानों की, वो किस बिना पर होगी? गफलत के बिना पे। तो इल्म वो वाहिद हथियार है जो हमारे दिल से गफलत के पर्दों को हटाता है, जो हमारी आंखों से गफलत के पर्दों को हटाता है, जो हमारे कानों से गफलत के पर्दों को हटाता है। और जो लोग इल्म नहीं सीखते, स्कॉलर्स कहते हैं इस आयत के पाठ की तशरी में, उलाइका कल अनामी बल हुम अदल, कि ऐसे लोग जिनको शौक नहीं है, तलब नहीं है, ना ही सीखने की और ना सिखाने की, जिनका हम और गम सिर्फ दुनिया है, या जिनका पर्पस ऑफ लाइफ ये है कि खाना पीना सोना जागना, ख्वाहिशात की अंधी धुंध तकलीद करना, तो ऐसे लोग जानवरों की तरह हैं। जो चीज इंसान को जानवर से डिस्टिंग्विश करती है वो सिर्फ और सिर्फ तफकीर है, और वो इल्म है। तो ये है इल्म की फजीलत। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि क़ायमुल लैल और साइमुन नहार हज़ार आबिदों की मौत, हलाल और हराम जानने वाले एक दाना बीना की मौत के मुकाबले में हीच है। अल्लाहु अकबर। कि देखें, एक तरफ हज़ार आबिद हैं यानी इबादत करने वाले, जो दिन को रोज़ा रखते हैं और रात को क़ियामुल लैल करते हैं, एक तरफ उनकी मौत है, और दूसरी तरफ एक ऐसे बंदे की मौत है जिसके पास इल्म है, शऊर है, हलाल और हराम का इल्म है, तो उसकी मौत ज्यादा माना रखती है हजार आबिदों की मौत की बनिस्बत। और इसी तरह उमर बिन अब्दुल अजीज फरमाते थे कि जो कोई इल्म के बगैर अमल करता है उसका फसाद इस्लाह से ज्यादा होता है। तो ये तो इल्म की हमने रैंडम बात की कि इल्म की क्या इम्पोर्टेंस है और इल्म इंसान को किस मकाम तक पहुंचा देता है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि हमने इल्म सीखने के लिए कुरान के जूस को ही यानी आखिरी जूस को क्यों सिलेक्ट किया? क्यों हमने तदब्बुर के लिए आखिरी जूस को सिलेक्ट किया? या वी कैन से कि हमने क्यों कुरान को सिलेक्ट किया इल्म सीखने के लिए? अगर ये सवाल मैं आपसे पूछूं तो आपके पास इसके बेपनाह आंसर्स होंगे। आप बता सकती हैं कि हर चीज क्रिएशन है और कुरान जो है वो अल्लाह के अल्फाज हैं, और इसी तरह आप बता सकती हैं कि तमाम उलूम में से जो अशरफ और आला इल्म है वो कुरान का इल्म है, और कुरान से ही बाकी सारे उलूम निकलते हैं। तो हमने डायरेक्ट सोर्स की तरफ डायरेक्शन की है कि हम उसको सीख सकें। लेकिन जिस सोच के तहत हमने इस जुज को तदब्बर के लिए सिलेक्ट किया वो सोच कोई और थी। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, अलिफ लाम रा किताबुन अनज़लनाहु इलैका, ये एक किताब है जिसे हमने आपकी तरफ नाजिल किया, लितुखरिजन नास मिन अज़्ज़ुलुमात इलन नूर, ताकि आप इसके जरिए लोगों को अंधेरों से निकाल के रोशनी की तरफ लाएं। आज की दुनिया अनसर्टेनिटी से भरी हुई है, हर तरफ डार्कनेस, हर तरफ सैडनेस, डाउट्स हैं, हमें समझ ही नहीं आता कि दुरुस्त क्या है और गलत क्या है, डिप्रेशन है, मायूसियत है, और इन सब चीज़ों को अल्लाह ने जुलुमात से तशबीह दी है कुरान में, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें पैदा किया और अल्लाह ताला जानते थे कि इंसान जुलुमात में ज़रूर बज़रूर फंसेगा, क्योंकि दुनिया में जुलुमात ज़रूर हैं। तो इसलिए अल्लाह ताला ने कुरान नाजिल किया कि ये कुरान तुम्हें निकालेगा मिनल जुलुमाती इलन नूर। और नूर क्या है? क्लैरिटी, पीस, फियर को कॉन्फिडेंस में कन्वर्ट करना, होप। आज की जिंदगी में हम जिस भी फेस में हैं, हर इंसान तजब्जुब और अजीबो गरीब कैफियत का हामिल हुआ रहा है। हमारी रवायात हमें एक तरफ से सदाएं लगाती हैं कि इधर आओ, फैशन और ट्रेंड एक तरफ से सदाएं लगाते हैं कि इधर आओ, नफ्स और शैतान एक तरफ को बुलाते हैं, वेस्टर्न कल्चर हमें अपनी रंगीनियां दिखाई जा रहा है। तो अब बेचारा इंसान तजब्जुब का शिकार है कि क्या किया जाए, किसके रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया जाए और किसके रिक्वेस्ट को इग्नोर किया जाए। तो ऐसे में ये आयत मुझे और आपको जवाब देती है कि एक किताब ऐसी है जो तुम्हें इन तमाम चीजों से निकाल के नूर की तरफ लेकर जाएगी, और वो किताब कौन सी है? कुरान, जिसके बारे में एक और जगह अल्लाह ताला फरमाते हैं, फमन इत्तबअ अल हुदा फला यदिल्लु वला यशका, कि जो कोई इसकी पैरवी करेगा तो ना वो गुमराह होगा और ना वो बदबख्त होगा। और इब्ने अब्बास इसकी तफसीर में फरमाते हैं कि यदिल से मुराद है कि दुनिया में वो कभी गुमराह नहीं होगा, और यशका से मुराद है कि आखिरत में वो कभी बदबख्त नहीं होगा। तो ये वो वाहिद किताब है कि जिसको थामने से हम दुनिया में भी कामयाब हो सकते हैं और हम आखिरत में भी कामयाब हो सकते हैं। इसी तरह आज कितना डिप्रेशन है, क्या रीजन बताई जाती है कुरान में, वमन अअरदअ अन ज़िक्री फइन्न लहू मईशतन ज़ंका वनहशुरुहू यौमल क़ियामति अअमा, कि जो मेरे जिक्र से मुंह मोड़ेगा, मेरे कुरान से मुंह मोड़ेगा, तो उसकी जिंदगी को हम तंग कर देंगे। दूसरे अल्फाज में कि वो डिप्रेशन का शिकार हो जाएगा। वनहशुरुहू यौमल क़ियामति अअमा, और क़ियामत के दिन हम ऐसे शख्स को अंधा उठाएंगे। क्यों अंधा उठाया जाएगा? क्योंकि अल्लाह ताला ने उसे आंखें दी थी, उसने अपनी आंखों से हर चीज देखा, हर चीज का नजारा किया, लेकिन कुरान पर गौर फिक्र नहीं किया। अपने आंखों के जरिए कुरान को अपने अंदर नहीं लेकर गया, तो अल्लाह कयामत के दिन ऐसे शख्स को अंधा कर देंगे। तदब्बुर में सबसे ज्यादा फोकस किया जाता है, और फोकस कहते हैं अपनी निगाहों को किसी चीज पर मजकूर करना। तो गोया जो तदब्बुर नहीं करते कुरान पर, गौर व फिक्र नहीं करते, ऐसा शख्स कयामत के दिन नाबीना हो जाएगा। और मैं जब ये आयत पढ़ रही थी तो सोच रही थी कि कितना मुश्किल होता है कि इंसान कुछ चीज महसूस करे लेकिन उसको देख ना सके। मिसाल के तौर पे आप सब अभी जिस रूम में बैठे हुए हैं, अब रूम बंद है और बाहर से कुछ आवाजें आ रही हैं, तो आपकी पहली कोशिश क्या होगी? फौरन बाहर जाके देखें, सुने नहीं, देखें कि हो क्या रहा है। तो देखना इंसान की फर्स्ट प्रायोरिटी है। लेकिन कल जब सारे इंसान इकट्ठे और बीच में से कुछ लोगों जो देख ही ना सकें, जो कयामत के दिन देख सकेंगे ना, वो कुछ लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए खुद को बचा पाएंगे, लेकिन कयामत के दिन जो सिरे से ही अंधा हो जाए, उसका क्या हाल होगा फिर? तो बात मैं ये कर रही थी कि तदब्बर करने से इंसान की जिंदगी मुतमईन हो जाती है, और तदब्बर कुरान के उलूम में से एक इल्म है, याद रखिएगा, जो इंसान को सिखाता है कि कुरान को अपने ऊपर कैसे अप्लाई कर सकते हैं, आयात को अपनी लाइफ से रिलेट करना एक्चुअली तदब्बर में सिखाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा आप, क्योंकि पहला सवाल आपको आना चाहिए कि आप तदब्बर करने जा रहे हैं तो तदब्बर किसको कहते हैं। मिसाल के तौर पे एक आयत है, इन्ना अतैना कल कौसर। अब इस आयत को मैं अपनी लाइफ के साथ कैसे रिलेट कर सकती हूँ? इस आयत में मेरे लिए क्या लेसन है, मेरे लिए क्या डू एंड डोंट्स हैं? तो ये सब कुछ तदब्बर में सीखा जाता है। और इसी तरह कुरान के एक्चुअली पांच हक हैं। सबसे पहला जो हक होता है वो है हक तिलावा, यानी तिलावत करना, और ये एक्सीलेंस लेवल है। हम बहुत से मकासद के लिए तिलावत करते हैं, मसलन रिवॉर्ड को अर्न करने के लिए, बरकत के लिए, पीस के लिए, शैतान को दूर भगाने के लिए। दूसरा जो हक है कुरान का वो है हकुल हिफ्ज, कि कुरान को मेमोराइज करना, याद करना, चाहे पूरा, चाहे कोई पोर्शन, चाहे कोई जुज, चाहे कोई आयत, चाहे कोई बीच में से अल्फाज। और अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, बल हुआ आयातुम बय्यिनातुन फी सुदूर अल्लज़ीना ऊतुल इल्म, कि ये तो रोशन आयात हैं जो इल्म वालों के सीनों में हैं। तो गोया अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं कि जो कुरान को मेमोराइज करता है वो नॉलेजेबल पर्सन है। इल्म वाला एक्चुअली वो है जिसके सीने में कुरान है। इसी तरह जो तीसरा हक है जिसको मैं और आप इंशाअल्लाह अदा करने जा रहे हैं, वो है हक तदब्बर, रिफ्लेक्शन। और अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, अफला यतदब्बरून अल कुरान अम अला कुलूबिन नक्फालुहा, क्या वो कुरान पे गौर व फिक्र नहीं करते, या उनके दिलों पे ताले पड़ चुके हैं, यानी उनके जो हार्ट्स हैं वो सील्ड हो चुके हैं, वो लॉक्ड अप हो चुके हैं। तो कुरान से असल फायदा तब उठाया जाता है जब कुरान पर रिफ्लेक्शन किया जाता है, और इसके टू स्टेप्स होते हैं, एक तो मीनिंग पर गौर करना, और नंबर टू उसको रिलेट करना अपनी पर्सनल लाइफ के साथ। और इंशाल्लाह हम ये दोनों काम आगे करने जा रहे हैं। इसके अलावा जो चौथा हक है वो है हकुल अमल, और आप सब ही जानते हैं कि अमल बहुत जरूरी है, जन्नत या जहन्नुम इसका तायुन हमारे आमाल करते हैं। जिस तरह अल्लाह ताला फरमाते हैं, वल असर इन्नल इंसान लफी खुसर इल्लल लजीना आमनू व अमिलु सालिहाती व तवासौ बिल हक व तवासौ बिस सब्र। तो एक और हक जो कुरान का होता है वो ये है कि उस पर अमल करना, जिस चीज पे आप तदब्बुर करें उसको अपने अमल में ढाल लेना।
والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
اور جو آخری حق ہے قرآن کا وہ ہے حق التبلیغ، کہ انسان نالج کو اپنی حد تک لمیٹڈ نہ کرے بلکہ جو سیکھے وہ دوسروں کو سکھائے۔ تو یہ تو تھے قرآن کے کچھ حقوق۔ اب ہم اپنی ڈسکشن کی دوسری سائٹ پہ آتے ہیں کہ بینگ اے قرآن اسٹوڈنٹ میری اور آپ کی کیا رسپانسبلٹیز ہیں۔ آپ دیکھیں اللہ نے قرآن کے ذریعے آپ کو ایک مقام دیا ہے، علم کے ذریعے، پھر قرآن کے ذریعے، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، پھر اسی طرح ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذين اوتوا العلم درجات۔ تو اللہ نے آپ کو ایک وی آئی پی پروٹوکول دیا ہے، اللہ نے آپ کو اور مجھے عام سے خاص کی لسٹ میں شامل فرما دیا۔ اب آپ اللہ والے ہیں۔ ایک دفعہ رسول اللہ نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ کچھ لوگ اللہ والے ہوتے ہیں، تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون سے لوگ ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ قرآن والے اللہ والے ہوتے ہیں۔ تو آپ کی نسبتیں اب اللہ سے منسوب ہو چکی ہیں، اور جس چیز کی نسبت اللہ سے منسوب ہو جائے وہ چیز بہت اہم ہو جاتی ہے۔ قرآن کیوں اہم ہے؟ کتاب اللہ، کہ وہ اللہ کی کتاب ہے، اس لیے امپورٹنٹ ہے۔ جو بیت اللہ ہے وہ کیوں اہم ہے؟ حالانکہ وہ گھر ہے، لیکن اس کی نسبت اللہ کے ساتھ ہے، بیت اللہ۔ اسی طرح عرش، مخلوق میں سب سے اہم چیز عرش ہے، کیوں؟ کیونکہ وہ ذو العرش اللہ کے ساتھ منسوب ہے۔ اسی طرح اللہ کو جو نام بہت پسند ہیں، عبداللہ اور عبدالرحمن، کیوں؟ ان کی نسبت اللہ کی طرف جاتی ہے۔ تو اسی طرح جو انسان عبداللہ بن جاتا ہے یا جس کی نسبت قرآن کے ساتھ جڑ جائے تو وہ بہت اہم بن جاتا ہے۔ جو چیز جتنی اہم ہوتی ہے اس کی رسپانسبلٹیز بھی اتنی زیادہ ہوتی ہیں۔ اور بینگ اے قرآن اسٹوڈنٹ میری اور آپ کی کیا رسپانسبلٹیز ہیں، آئیے یہ ہم جلدی سے دیکھتے ہیں اور اس غرض سے سنتے ہیں کہ ہم نے انشاءاللہ ان سب کو فالو کرنا ہے۔ نمبر ون، اخلاص النیہ، نیتوں کا خالص ہونا۔ سب سے پہلے مجھے اور آپ کو اپنی انٹینشنز چیک کرنی ہوں گی کہ وائی آئی ایم ہیئر، میں یہاں آئی ہوں تو کیوں آئی ہوں، میں بول رہی ہوں تو کیوں بول رہی ہوں، میں سن رہی ہوں تو کیوں سن رہی ہوں، میرا پرپس کیا ہے، گروپ میں آنے کا میرا مقصد کیا ہے، کورس کو جوائن کرنا کس غرض کے لیے تھا۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ زمر میں مجھے اور آپ کو فرماتے ہیں کہ فعبد اللہ مخلصا له الدین، کہ تم اللہ کی عبادت کرو دین کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تمہارے جسموں اور صورتوں کو نہیں دیکھتا بلکہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ اور جب حضرت معاذ بن جبل کو یمن کا گورنر بنا کے بھیجا جانے لگا تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھے کچھ نصیحت کیجئے، تو آپ نے فرمایا اپنے دین میں اخلاص رکھو، تھوڑا کام بھی تم کو کافی ہو جائے گا۔ اور ایک دفعہ رسول اللہ نے فرمایا کہ تعوذوا باللہ من جب الحزن، کہ تم جب الحزن یعنی ایک غم کے کنویں سے اللہ کی پناہ مانگا کرو۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ جب الحزن سے کیا مراد ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ جہنم میں ایک ایسا گڑا ہے جس سے جہنم روزانہ 400 مرتبہ پناہ مانگتی ہے۔ پھر صحابہ کرام نے پوچھا وَمَنْ يُدْخِلُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، کہ اس میں کون داخل ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا کہ وہ قاری اور پڑھنے والے جو لوگوں کے دکھانے کے واسطے پڑھتے اور عمل کرتے تھے۔ ترمذی میں یہ روایت ملتی ہے۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ میرا اور آپ کا شمار ایسے لوگوں میں کبھی نہ فرمائے کہ جو تھکتے تو ہیں لیکن ان کی تھکن کا بدلہ ان کو نہیں ملتا۔ ناصیتن کاذبتن خاطئہ، जिनकी पेशानी थकती है लेकिन कोई बदला नहीं मिलता। तो पहला काम क्या करना है? अपनी नीयतों को चेक करना है, प्योरीफाई करना है। हयाती कुल्लुहा लिल्ला, ए अल्लाह मेरी जिंदगी सारी आपके लिए है। इन सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। और इसके लिए अल्लाह से बहुत दुआ करनी है कि अल्लाह मेरी नीयत को आप प्योरीफाई करें। एक हदीस के मफहूम है कुछ इस तरह कि जिस तरह स्याह रात में स्याह पहाड़ पर स्याह पत्थर है और पत्थर पे स्याह चींटी हो तो वो कोई नहीं देख सकता, इसी तरह ऐसे हमारी नीयतें भी खराब हो जाती हैं कि इंसान को पता ही नहीं चलता। तो हमने हर क्लास में आने से कबल अपनी नीयत को जरूर चेक करना है कि व्हाई आई एम हियर। और इसके लिए हम जो पहली दुआ भी याद करेंगे वो इख्लास निया की ही होगी। अल्लाहुम अखलिसनी लिवजही कल करीम, या अल्लाह मुझे अपने चेहरे की दीदार के लिए खालिस कर लें। अल्लाहुम अजअल अमली कुल्लहु सालिहा वजअलहु लिवजही का खालिसा वला तजअल लि अहदिन फीही शैआ। तो इंशाल्लाह इस दुआ को हम अपनी फर्स्ट क्लास में मेमोराइज भी करेंगे और हर क्लास के बिगिनिंग में हम इस दुआ को पढ़ा करेंगे और क्लास में आने से कबल भी एक बार अपनी नियतों को रीन्यू करके हम इंशाल्लाह क्लास में एंटर होंगे। फिर जो दूसरा काम है जो मैंने और आपने करना है, आप लिखते जाएं। काइंडली आप अगर सुन रहे हैं तो आप इन सबको नोट डाउन करें और मैं चाहूंगी कि आप एक स्टिकी नोट पे मेन पॉइंट नोट डाउन कर लें और जिस रूम में आप बैठ के सुनेंगे वहां सामने वॉल पे उसको पेस्ट कर दें ताकि हर वीक रिवाइव होती रहे कि हमने क्या काम करने हैं। तो दूसरा जो काम है वो है इल्म पर अमल। हजरत अबू दर्दा फरमाते हैं कि जो ना जानता है ना अमल करता है उसके लिए एक हलाकत है, मगर जो इल्म तो रखता है और अमल नहीं करता उसके लिए सात हलाकते हैं। अल्लाहु अकबर। और हजरत हसन बसरी रहमहुल्ला फरमाते हैं कि लोगों को उनके अफाल से परखो अकवाल से नहीं, लोगों की बातों से इम्प्रेस ना हो, देखो कि वो काम क्या कर रहे हैं। और हजरत जुंदुब बिन अब्दुल्ला फरमाते हैं कि दूसरों को नसीहत करने वाला और खुद भूल जाने वाला उस कैंडल की तरह है, उस शम्मा की तरह है जो खुद जलकर दूसरों को रोशनी देती है। यानी जिसकी बातें दूसरों के लिए तो हिदायत का जरिया बन जाते हैं लेकिन वो खुद उनको अपने ऊपर अप्लाई नहीं करता। ये शेर भी आप सबको आता होगा कि अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नुम भी, ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी। तो इसलिए आपने जो सीखना है इस गर्ज से सीखना है कि मैं उसको अप्लाई कर सकूं, उसको अपनी लाइफ में शामिल कर सकूं। अगर आप कुरान की पहली सदा पर अमल नहीं करेंगे तो आपको दूसरी सदा समझ नहीं आएगी। अगर आप पहले लेसन पर अमल नहीं करेंगे तो दूसरा लेसन कभी आपको समझ में नहीं आएगा। ये बात मेरी आप लिख लीजिए। मसलन सूरतुल फातिहा में जो डू एंड डोंट्स हैं, अगर आपने उनको अपनी लाइफ पे अप्लाई नहीं किया तो सूरतुल बकरा की पहली आयत भी आपको समझ नहीं आएगी। कैसे समझ नहीं आएगी? या तो आपका दिल ही नहीं लगेगा या कोई हर्डल क्रिएट हो जाएगी, आप क्लास में नहीं आ पाएंगे, या इस तरह के आप क्लास में भी आएंगे आपको वो बात समझ भी आएगी लेकिन अमल की राहें हमवार नहीं होंगी। शायद अमल की राह हमवार हो जाए लेकिन वक्ती तौर पे, ठीक है। तो ये हिदायत बहुत गयूर चीज है, ये बार बार दिल के दरवाजे पे दस्तक नहीं देती। अगर एक बार इसने आपके दिल के दरवाजे पर दस्तक दी है और आपने दरवाजा नहीं खोला अमल करके, तो फिर दोबारा ये आपके दिल के दरवाजे पर कभी दस्तक नहीं देगी। सूरत नास में जो डू एंड डोंट्स हैं वो आप नहीं खुद पे अप्लाई करेंगे तो उसके बाद जो पिछली सूरत है सूरत अल-फलक, उसके डू एंड डोंट्स आपको समझ ही नहीं आएंगे। ये जिंदगी में वापस सूरत नास आपके सामने नहीं आएगी, और ये बहुत डराने वाली चीज है। कोई भी आयत जो आपके सामने एक बार आती है और आपको समझ भी आ जाती है, लेकिन आप अमल नहीं करते, तो वो आयत जिंदगी में वापस आपके सामने नहीं आती। तो इसलिए अमल के गर्ज से सुनना है। यहां मैं एक चीज आपके क्लियर करते चलूं कि बहुत से लोग इसलिए भी नहीं आते या आके चले जाते हैं कि मैं अमल नहीं कर पाऊंगी, मैं नहीं कर सकती। मुझे हैरत होती है कि जिनके पास अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात है या जो अल्लाह को मानते हैं, उनकी जिंदगी में ये कैसे जुमला आ सकता है कि मैं नहीं कर सकती। जिसके पास रब हो, फिर वो इतना मायूस कैसे हो सकता है? वो कैसे कह सकता है कि मैं अमल नहीं कर सकता या मैं अमल नहीं कर सकती? तो इसलिए जिस अल्लाह ने इल्म की राहें हमवार की हैं, वो अमल की भी राहें हमवार करेगा। प्लीज अल्लाह से अच्छा गुमान रखें। इल्म की भी राहें अल्लाह ने हमवार की है ना, यहाँ आप खुद नहीं आई, मैं खुद नहीं आई, अल्लाह ताला हमको लेकर आए हैं, अल्लाह ने तौफीक दी है। तो अगर इल्म की तौफीक उसने दे दी है, तो अमल की तौफीक भी वही साथ देगा। उसी से हम दुआएं करेंगे, हमारा काम है कोशिश करना, अल्लाह रब्बुल इज्जत का काम है अमल की राहें हमारे लिए हमवार करना। बस हमने एक्चुअली बहुत से फ्यूचर फियर्स अपने अंदर पाले हुए हैं कि उफ अल्लाह, 6 माह का कोर्स है, मैं कैसे करूंगी? अगर मैं कंटिन्यू ना कर पाई, कितने मुझे मैसेजेस आ चुके हैं कि अगर हम कंटिन्यू ना कर पाए तो जिस मुस्तकबिल के लिए आप इतने खौफजदा हैं, सवाल ये है कि आपको कैसे यकीन है कि क्या पता उस मुस्तकबिल में आप होंगे भी या नहीं? जिस मुस्तकबिल को लेके मैं और आप इतने खौफजदा होते हैं, क्या पता हम उस मुस्तकबिल का हिस्सा ही ना हो? कितने लोग हैं जिनकी सुबह होती है शाम नहीं होती, जिनका आज है कल नहीं है, ये वीक है अगला वीक उनका नहीं है, ये मंथ है अगला मंथ उनका नहीं है, ये ईयर उनका है अगला ईयर उनका नहीं है। कैसे इतनी लंबी प्लानिंग में और आप कर सकते हैं? तो जो ईमान वाले होते हैं ना, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, खौफ यानी उनको फ्यूचर का कोई खौफ नहीं होता और उनको पास्ट का कोई रिग्रेट नहीं होता। हज़न और खौफ से उनकी जिंदगी खाली होती है। वो प्लानिंग जरूर करते हैं लेकिन वो परेशान नहीं होते, क्योंकि वो जानते हैं कि उनका रब है और रब का सब है। वो रब कादिर है, हर चीज उसके कुन की मोहताज है। वो कुन फरमाएगा तो फयकून हो जाएगा, डेट्स ऑल। तो शैतान की इस ट्रिक को आप समझा करें कि मैं इसलिए इल्म नहीं सीखती, मैं कोई कोर्स इसलिए ज्वाइन नहीं करती कि मैं अमल नहीं कर पाऊंगी। तो अगर आपने एक रास्ता चूज नहीं किया, तो जो दूसरा रास्ता आपने चूज किया है ना, वो उससे भी बदतर है। एक अगर बदतर है तो दूसरा बदतरीन है। और हर दिन, हर नमाज में, हर रकत के अंदर हम ये दुआ मांगते हैं, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन। मग़दूब कौन से लोग होते हैं? जिनके पास इल्म होता है और अमल नहीं होता। और दाल कौन से लोग होते हैं? जिनके पास ना इल्म होता है ना अमल होता है। और हम इन दोनों कैटेगरीज में आने से अल्लाह से दुआ करते हैं कि हम ऐसे लोगों में शामिल ना हो। हम जिन लोगों को फॉलो करना चाहते हैं या जैसे बनना चाहते हैं, वो लोग हैं अनअमत अलैहिम, यानी जिनके पास इल्म भी है और अमल भी है। तो याद रखिएगा कि इल्म हमेशा अमल की राहें हमवार करता है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप इल्म सीखें और आपके अमल में कोई चेंजिंग ना आए। 100 out of 100% नहीं आएगी, लेकिन आई होप कि 10% तो आएगी, 5% तो आएगी। और अगर वक्ती तौर पे ना आए, लेकिन लाइफ में एक बार जरूर आएगी, जब आपको याद आएगा कि हाँ, मैंने फलां टाइम ये चीज पढ़ी थी, उस पर अप्लाई करूं। या आप किसी दूसरे को बता देंगे। ठीक है, तो इस पॉइंट को भी आपने समझना है और अमल की गर्ज से क्लास में आना है। अब अमल की आसानी के लिए कुछ आमाल हैं जो आपने हर क्लास में आने से कबल करने। नंबर वन, आपने क्लास लेने से पहले 2 नफिल का एहतमाम करना है। 2 नफिल पढ़ के आपने दुआ करनी है कि या अल्लाह, मेरे लिए अमल की राहें खोलें। आज मैं जो सीखने जा रही हूँ आप मुझे तौफीक दें कि मैं उसको अप्लाई भी कर सकूं। और आप देखेंगे कि जब आप दो नफिल पढ़ेंगे उसके बाद जो आप सीखेंगे आप इतनी आसानी से उस पे अमल कर लेंगे कि आपको खुद भी यकीन नहीं आएगा कि ये मैं ही हूं जो अमल कर रही हूं। तो हम अमल भी उस वक्त तक नहीं कर सकते जब तक अल्लाह ना चाहे। तो अमल के लिए भी अल्लाह से दुआ मांगनी है, वस्तईनु बिस्सब्री वस्सला, नमाज से मदद मांगनी है। तो क्लास में आने से कबल आपने दो नफिल पढ़ने हैं इसलिए कि अल्लाह अमल की राहें आप मेरे लिए खोलें। और दूसरा काम ये करना है कि आपने सदका करना है। 27 या 28 क्लासेस हमारी होंगी तो 28 टाइम आपने सदका करना है क्लास में आने से कबल। मैं आपको ये नहीं कह रही कि आप बहुत हैवी अमाउंट डिपॉजिट करवाएं, आप अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग। और अगर कुछ नहीं तो मैं सिंपली आपको ये कहूंगी कि आप 30 रुपीज के 30 कॉइन्स करवा लें, ठीक है? 30 रुपीज आज ही किसी बच्चे को दें, उसके कॉइन्स ले आए, आप रखें घर में, एक बॉक्स आप बना लें, या चाहे कोई भी एक चीज ले लें, कोई बॉटल ले लें, कोई बॉक्स ले लें, कोई कैन ले लें, उसके अंदर हर वीक ये लेसन सुनने से कबल आपने एक कॉइन उसके अंदर डाल देना है। क्योंकि सदका भी बहुत सी आसानियां पैदा करता है और इंसान के दिल में सबसे ज्यादा माल की मोहब्बत होती है। तो जब हम सदका करते हैं ना तो हम बताते हैं कि अल्लाह हम अपनी ख्वाहिशात को भी कुर्बान किए जा रहे हैं। तो उसके बाद आगे जो भी अल्लाह ताला डू एंड डोंट्स बताते हैं उन पर अमल करना बहुत आसान हो जाता है। तो ये आपका नेसेसरी एलिमेंट होगा। हर क्लास में आपके इंचार्जेस आपसे पूछेंगी कि आपने ऑडियो सुनने से पहले क्या दो नफिल पढ़े हैं, क्या आपने सदका किया है। तो आप कोशिश करें कि ये दोनों काम लाजमी करें। ये दोनों काम करने से इंशाल्लाह अमल की राहें आपके लिए बहुत आसान होंगी। इसके अलावा भी लाइफ में कोई भी काम है वो आपके लिए डिफिकल्ट है, नेकी का काम, आप फौरन से सदका करें इसलिए कि मैं उस पर अमल कर पाऊं। दो नफिल पढ़ दें तो आप देखिएगा कि किस तरह वो काम आपके लिए आसान हो जाएगा। अगला काम यह है कि इल्म के हुसूल के लिए आपने मेहनत करनी है। बीइंग अ कुरान स्टूडेंट, हमने इल्म के हुसूल के लिए मेहनत करनी है। और इल्म लज्जतों को और आराम को तर्क किए बगैर हासिल नहीं होता। अल्लाह ताला सूरह अनकबूत में फरमाते हैं, वल्लदीन जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, कि जो हमारे लिए जिहाद करता है हम उन्हें जरूर सीधा रास्ता दिखाते हैं। और एक और जगह अल्लाह ताला फरमाते हैं, वा अल्लैसा लिल इंसानी इल्ला मा सा, कि इंसान के लिए तो बस वही है जिसके लिए उसने कोशिश की है। तो आप जिसके लिए कोशिश करेंगे आप उसको अचीव कर लेंगे। और इमाम अबू यूसुफ का एक बहुत खूबसूरत कौल है कि इल्म वो चीज़ है जो अपना बाज भी यानी अपना हाफ भी आपको नहीं देगा जब तक आप उसको अपना फुल ना दे दें। और एक बहुत खूबसूरत शेर भी है कि तू बचा बचा के न रख इसे, तेरा आईना है वो आईना, जो शिकस्ता हो तो अजीज तर है निगाहे आईना इस आज में। तो इसलिए कभी कभार खुद को अल्लाह के लिए आखिरी हद तक थकाना है। दुनिया के लिए भी तो हम थकते हैं ना, तो कभी कभार अल्लाह के लिए भी थकना है। वहां हम खुद को थकाना गवारा ही नहीं करते। 1 घंटे से ऊपर अगर 15 मिनट की रिकॉर्डिंग हो जाए तो हम परेशान हो जाते हैं। किसी दिन कुछ ज्यादा डिमांड कर लिया जाए तो हम फिर भी परेशान हो जाते हैं। तो इसलिए आपने मेहनत करनी है, ये मेहनत का रास्ता है। सबसे पहले इल्म सीखने के लिए मेहनत करनी है, उसके बाद उसको अप्लाई करने पर मेहनत करनी है। बाज दफा आपको बहुत डिफिकल्टीज आएंगी, कोई चीज आपको बताई जाएगी कि ये नहीं करनी, आप बार बार रिवाइव करेंगे, बार बार उसको अप्लाई करेंगे, यानी एक मेहनत भरा सफर होगा, लेकिन आपने मेहनत करनी है, ठीक है? इंशाल्लाह। उसके बाद जो अगली चीज है वो है इस्तेकामत, स्टेबिलिटी, कंटिन्यूटी। और याद रखिएगा कि वक्त कभी निकलता नहीं है, वक्त निकाला जाता है। हिदायत मिलती नहीं है, मांगी जाती है। इसी तरह इल्म हासिल नहीं होता, इल्म हासिल किया जाता है। और अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं कि इन लदीन कालू रब्बुन अल्लाहु थुम्म इस्तकामू ततनज़्ज़ल अलैहिमुल मलाइका, कि फरिश्तों का नुज़ूल उन लोगों पर होता है कि जो पहले क्लेम करते हैं कि हमारा रब अल्लाह है, फिर उस पर साबित कदम रहते हैं। और इसी तरह क्यों हर फ्राइडे हम लोग सूरह कहफ पढ़ते हैं, कभी आपने खुद से सवाल किया? क्योंकि उसमें जो नौजवान थे, इन्नहुम फितयतुन आमनू बिरब्बिहिम वज़िदनाहुम हुदा, उनका जो सबसे बेहतरीन एक्शन था वो इस्तकामत थी। उन्होंने कह दिया कि हमारा रब अल्लाह है, तो फिर उस पर जम गए, और ऐसे जमे कि उन्होंने ये नहीं देखा कि हम कहाँ जा रहे हैं, कट ऑफ कर लिया, लेकिन अपनी बात से फिरे नहीं हैं। आजमाइशें आई हैं, लेकिन उन्होंने आजमाइशों का मुकाबला किया है, आजमाइशों को खत्म किया है, आजमाइशों ने उन्हें खत्म नहीं किया। इसीलिए कहा जाता है कि सूरह कहफ हर जुम्मे को पढ़ने वाला वो दज्जाल के फितने से महफूज रहेगा, वो अपने ईमान पे साबित कदम रहेगा। और फितयतुन, बेसिकली ये जो आयत है ना, इन्नहुम फितयतुन, तो फितिया कहते हैं सही वक्त में सही फैसला करने वाला नौजवान। तो ये सब नौजवान थे, क्योंकि जवानी में जो डिसीजन लिए जाते हैं ना, वो एज के किसी और हिस्से में इंसान नहीं ले सकता, इसमें बड़े जबरदस्त इंसान डिसीजन लेता है। जवानी में जो सिबगतुल्लाह में ढल जाता है, वो उम्र के किसी हिस्से में भी जाके फिर मार नहीं खाता। जवानी में वो रब का जो अगर हो गया, तो बुढ़ापे का रंग उसके रब के रंग को माइल कभी नहीं करेगा, यानी जायल नहीं करेगा, खत्म नहीं करेगा। तो आप सब ने भी अगर ये क्लेम कर दिया, आप ग्रुप में आ गए हैं, तो अब आपका काम है कि आपने अपने आप को जमाए रखना है बहुत सी दुआओं के साथ। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बाद इज़ हदैतना, या अल्लाह हिदायत के आ जाने के बाद अब मेरा दिल ना फेरिएगा, मैं सबसे ज्यादा बदबख्त होंगी अगर अब मैं बदल गई तो। तो इसलिए वापसी की कश्तियां जलाकर आपने निकलना है इंशाल्लाह। कोशिश करनी है कि 27 लेक्चर्स आपके हर हाल में कंप्लीट हो, और मुश्किलात आएंगी हर सैटरडे को जब आपकी डिस्कशन टाइम होगा। आप देखेंगे कि उस दिन शायद कोई गेस्ट आ जाएंगे, कहीं आपको इनविटेशन मिल जाएगी, कभी क्या हो जाएगा, कभी क्या हो जाएगा, लेकिन आपने मुकाबला करना है। आप किसी के घर हैं, आप कहते हैं मेरी आधे घंटे की डिस्कशन है, मुझे थोड़ा सा टाइम दे दें। आपके घर कोई मेहमान आए हैं, आप उनको एक्सक्यूज कर दें थोड़ी देर के लिए। तो इसलिए आपने इस्तकामत इख्तियार करनी है, और ये अजीमत की राह है, इसको आपने खुद इख्तियार करना है। अगली चीज क्या है? सफाई, क्लेंजिंग। कैसी क्लेंजिंग? इनर एंड आउटर क्लेंजिंग। याद रखिएगा, कुरान नूर है और पोल्यूटेड दिल में दाखिल नहीं होता। कैसे हो सकता है कि अगर मेरा और आपका दिल पोल्यूटेड हो, ग्रजेस के साथ, नफरत के साथ, हसद के साथ, बुग्स के साथ, कीने के साथ, और तरह तरह के अमराज़ुल कुलूब के साथ भरा हुआ हो, जैम्ड पैक्ड हो, और फिर कुरान वहां दाखिल हो? आप इमेजिन करें कि आपके सामने एक ग्लास है और उसके अंदर पानी है, वो पूरा फैला पाए, आप उसके अंदर क्या मजीद पानी डाल सकते हैं? नहीं। क्या होगा? वो पानी साइडों से बह जाएगा। इसी तरह अगर मेरा और आपका दिल मुख्तलिफ बीमारियों से भरा पड़ा है, तो कुरान उसके अंदर एंटर नहीं होगा। सॉरी टू से, 27 के 27 लेक्चर अंदर नहीं जाएंगे, क्योंकि खाली बर्तन में पानी जाता है। जो बर्तन ऑलरेडी भरा हो, उसके अंदर क्या चीज दाखिल होगी? तो पहला काम क्या करना है सफाई में, कि अपने दिलों को साफ करना है, माफ करना सीखें। आप और मैं माफ करेंगे तो हमें माफ किया जाएगा। देखें, हम इंसान हैं, अगर आपके दिल में किसी के लिए कोई नेगेटिव फीलिंग्स हैं, तो इट्स वेरी नेचुरल। ये चीज शो करती है कि आप भी इंसान हैं, और जिस चीज के बारे में आपके ये जज्बात हैं, वो भी इंसान है। उसने बीइंग अ मैन ये गलती की, और आप भी बीइंग अ ह्यूमन बीइंग उस चीज को फील कर रहे हैं। लेकिन क्या करना है, जब कभी आग लग जाए ना, तो उस वक्त आग बुझाने की कोशिश की जाती है। तो अगर आग लगी तो उसको बुझाएं, अपने दिल को साफ करें। कोई बात नहीं, वो इंसान है, उसको इंसान समझे जिससे मिस्टेक हुई है, और आप माफ करना सीखें। फाफू वस्फहू। और कभी भी खून को खून से साफ नहीं किया जाता, खून को पानी से साफ किया जाता है। तो आप पानी बने, खून मत बने। कोई आपके साथ गलत कर रहा है, आप बदले में गलत करेंगे तो क्या फर्क रहेगा आपके और उसके दरमियान? मजा तो तब है कि जो आपको गिरा रहा है आप उसको सहारा दें। और वैसे भी ये जिंदगी बहुत लिमिटेड है, हर रिश्ता बस एक बार आपको मिला है, जो जिस सूरत में भी है वो एक बार आपको मिला है, आपका वजूद एक बार इस दुनिया में आया है। तो क्या फायदा अपनी जिंदगी में, अपने दिलों में लोगों के लिए नेगेटिव फीलिंग्स रखने का? कोई फायदा नहीं है, और इसका सबसे ज्यादा नुकसान मुझे और आपको होगा। तो अपने दिलों को खुद साफ करें, प्योरीफाई करें, उनको क्लींस करें। कैसे? अल्लाह से दुआ मांगते हुए, या अल्लाह रब्बना ला तजअल फी कुलूबिना गिल्लन लिल्लज़ीना आमनू। या अल्लाह, वो ईमान वाला बंदा है, ये कितने गलत बात है कि एक ईमान वाले बंदे के लिए मेरे दिल में ऐसे ग्रजेस आ रहे हैं, ऐसे नेगेटिव फीलिंग्स आ रही हैं, जेलिसी आ रही है। या अल्लाह आप मेरे दिल को साफ कर दें। फिर इसी तरह गिफ्ट्स एक्सचेंज करें और उसके साथ टाइम स्पेंड करें। अल्लाह से दुआ करें कि मुझे वो आंख दें जो लोगों की अच्छाइयां देखें। या अल्लाह लोगों के ऐब मुझसे और मेरे ऐब बस लोगों से छुपा दें। और माफ करना बस सीखें, क्योंकि अगर मेरे और आपके दिल गंदे होंगे तो कुरान की कोई आयत हमारे अंदर एंटर नहीं होगी। तो इस कोर्स को शुरू करने से पहले अपने दिलों को साफ करें, जो नाराज हैं उनको राजी कर लें, उनको एक मैसेज कर दें, उनको कहें मैं कुरान कोर्स स्टार्ट करने जा रही हूँ तो आप प्लीज मुझसे राजी हो जाएं। और अगर कोई ऐसा बंदा है कि जिसके लिए आपके दिल में कोई नेगेटिव फीलिंग्स है, तो अभी से निकाल दें, आप माफ कर दें। रब्बी अग़फिरली वलहा, अल्लाह मुझे उसको माफ कर दें। कोई छोटा सा गिफ्ट उसको दे दें, उसको एक दिन मैसेज कर लें, और मैसेज में काइंडली ये मत बताएं कि मेरे दिल में आपके लिए कोई ग्रज है या कोई नेगेटिव फीलिंग्स हैं। नो, बस सिंपली आप बात करें हंसते मुस्कुराते हुए, इधर उधर की कोई बात। तो इस तरह सारे मामलात इंशाल्लाह आपके और उसके सेट हो जाएंगे। एंड अबव ऑल, हमेशा ये सोचें कि वो अगला इंसान भी अल्लाह का बंदा है। अगर वो अल्लाह का महबूब हुआ तो फिर मेरा क्या बनेगा? तो इसलिए अपने दिलों को साफ करें, साफ दिल लेकर जिएं, क्योंकि आपका दिल आपकी जो आउटर बॉडी है उसका रिफ्लेक्टर होता है। जो आपके दिल के अंदर है वो आपकी बॉडी पे एक्सपोज होता है। तो दिल को खूबसूरत बनाने की कोशिश करें, और इसी के साथ साथ आउटर को भी क्लीन रखना है। मसलन आप कुरान की क्लास में जब आए तो उससे पहले कोशिश करें कि आप साफ सुथरे होके आए, वुजू करके आए, ब्रश कर लें, इसी तरह लाइट स्प्रे कर लें, और एक अलग रूम में जिस रूम में बैठे वो भी साफ सुथरा हो। तो ये सारी चीजें, खुशगवार माहौल में बैठना और अपने आप को भी साफ सुथरा बना के आना, इन सब चीजों का बहुत इम्पेक्ट होता है। ठीक है, तो इसलिए आपने अपनी सफाई का भी ख्याल रखना है। अगला काम क्या है? वक्त की पाबंदी। काइंडली टाइम से आइएगा और टाइम से जाइएगा। आप वक्त पे आएंगी तो आपके इंचार्जेस वक्त पे आपको छोड़ेंगी। उसके बाद आपने सिर्फ सीखना नहीं है, सिखाना भी है। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन वअल्लम। अगर आप कुरआन सीख रहे हैं तो आप पे वाजिब है कि आप सिखाएं भी। आपने सिर्फ खुद नहीं तड़पना, आपने औरों को भी तड़पाना है। जो पढ़ें शाम को आप बता दें अपने घर वालों के साथ, उसको शेयर करें कि आज हमने ये पढ़ा है, इस तरह इसको अपने ऊपर अप्लाई करना है। अपने फ्रेंड्स के साथ और जो कोई आपके रिलेशन में है उनके साथ आप ये शेयर किया करें, क्योंकि आप जितना दूसरों को देंगे इंशाल्लाह आपके इल्म में और अमल में उतना इजाफा होगा। और फिर इसी तरह जिस तरह की हमारा कोर्स था तो उसमें बहुत से और एडमिशन आ रहे हैं, लेकिन हमारे पास स्पेस नहीं है, तो तो यही हमने सोचा कि अब बस आप लोग सीखेंगे और आप आगे उन तक पहुंचाएंगे, तो इस गर्व से सीखें कि अब मैंने आगे सिखाना भी है। और आखिरी दो पॉइंट्स के कुरान को प्लीज रिस्पेक्टेड वे में लें। अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में। तो जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स होते हैं वो अक्सर क्लास कैसे लेते हैं, लेट के आराम सुकून से, क्योंकि उन्हें पता होता है कि हमें कोई देख नहीं रहा। लेकिन वहुआ माकुम अइनमा कुंतुम, इसी तरह बार सफा दुपट्टे नहीं होते बस सिर्फ सुन रहे होते हैं, नहीं, एक डिसेंट वे में लें, सुकून के साथ बैठ के, आपके पास कॉपी पेन हो जिसके साथ आप लिखते जाएं, नोट डाउन करते जाएं, एक ऐसे तरीके से आप बैठ के लें। और आखिरी पॉइंट की कॉपरेशन, देखें सलाम वाजिब नहीं है लेकिन उसका जवाब देना वाजिब है। अगर कोई बाहर से आ रहा है ना, तो उसने सलाम किया तो सब पर वाजिब है कि वो उसको जवाब दें। तो आपने इन चार्जेस को रिस्पॉन्ड करना है, वो आपके लिए यहाँ आए हैं, वो आपके खैर ख्वाह हैं। इस सारे प्रोसीजर में उनका कोई भी फायदा नहीं है, सरासर आपका फायदा है। तो वो जो भी आपको मैसेज करें आप उनको जवाब दें, उनके साथ कोऑपरेट करें। और ये आपका कोर्स है, इसमें आप तआवुन करेंगे तो ही हम इस कोर्स को बेहतर से बेहतरीन बना पाएंगे। आई होप कि आप बहुत खूबसूरत अजाइम के साथ यहाँ आए हैं, तो आप अपनी कोशिशों को भी बहुत खूबसूरत तरीके से यहाँ सर्व करेंगे, बहुत अच्छे तरीके से सीखेंगे, इन चार्जेस के साथ अपने फेलो के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे इंशाल्लाह ताला, और फिर उसके बाद बहुत अच्छे तरीके से आप आगे सिखाएंगे भी। तो इसके अलावा कोई और आपको प्रॉब्लम हो आप जरूर शेयर कीजिएगा अपने इंचार्जेस के साथ। कुछ भी मुश्किल नहीं है, हर काम उसका आगाज करना बहुत डिफिकल्ट होता है लेकिन वो आगे आसान हो जाता है, ठीक है? तो अल्लाह के खातिर आपने इस सफर को शुरू किया है, अल्लाह की मदद जरूर आएगी। आप दिल के साथ आए, दिल के साथ सुने और बस अमल की गर्ज से सुने, इखलास पर मबनी आपके अमाल होने चाहिए। जो समझ ना आए एक बार नहीं, आप 10 बार पूछ सकते हैं, कोई आप पे पाबंदी नहीं है। मुझसे पूछ लें, अपने इंचार्जेस से पूछ लें, अपने फ्रेंड्स से पूछ लें, किसी से भी पूछ लें, ठीक है? और बहुत से मैसेजेस आए जा रहे हैं कि हमें इस ग्रुप में ऐड करें, उस ग्रुप में ऐड करें, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ ऐड होना चाहती हूँ। तो देखिए कुरान में के सफर में आप सारे एक दूसरे के फ्रेंड्स हैं, तो आप जिसके साथ भी हैं आप इंशाल्लाह बहुत अच्छा इंजॉय करेंगे, आप उधर ही रहिए, ठीक? जज़ाकम अल्लाह खैरन कसीरा, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह ताला इस सफ़र को बहुत खूबसूरत बनाए मेरे लिए और आप सब के लिए। हम बहुत कुछ सीखें और इस अंदाज में सीखें कि जो हम तकरीबन 150 लोग हमारे साथ ऑनलाइन हैं, और इसके अलावा जो हमारा ऑन कैंपस है वो हमारे पास 45 to 50 लोग हैं। तो ये सारे लोग हम इस अंदाज में हम सीखें कि हम आगे बेहतरीन अंदाज से सिखा भी सकें और अपने अमल में ढाल सकें, अपने घरों को बदल सकें, अपनी नस्लों को बदल सकें और अपने इर्द गिर्द की एक एक चीज को बदल सकें। जज़ाकुम अल्लाहु खैरन कसीरा, तकब्बल अल्लाह मिन्ना व मिनकुम, सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून, व सलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वल असर इन्नल इंसान लफी खुसर इल्ला अल्लज़ीन आमनू व अमिलु सालिहाती व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस सब्र। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।